खुदावंद खुदा जो था जो है जो आने वाला है उसके पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 8 बाब हम उसकी 40वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर यायर की बेटी और यीशु मसीह की पोशाक को छूने वाली औरत का वाक्या है जिसे 12 बरस से बीमारी थी और खुदा ने से क्या दीजी शिफा दी। तो कल हमने 12 बरस से बीमार औरत के बारे में देखा। तो मैं चाहता हूँ जो कल शामिल नहीं हो सके वो इस वाक्या को जान ले कि क्या हुआ। आप सबके लिए आज ये पूरा वाक्या पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है 40वीं आयत में लूका 8 बाब उसकी 40वीं आयत। जब यीशु वहां वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो यायर नाम एक शख्स जो अबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो तकरीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिर पड़ते थे। और एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकती थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिर पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया है कि कुवत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पाई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। वो ये कह ही रहा था कि अबादत खाने का सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया, खौफ ना कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी। और वो घर में पहुंचकर पतरस और यहन्ना और यकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की, उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से ना कहना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की क्या हो जी। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने अभी अभी 12 बरस से बीमार उस औरत को कि वो रास्ते में जा रहा है, भीड़ ने उसे घेरे हुए है, उसने उसे ईमान से छुआ और उसकी बीमारी जाती रही। उसकी बीमारी जो 12 बरस से जिस पर उसने बहुत सारा प्या पैसा हकीमों पर लगाया उसे शिफा नहीं हुई, लेकिन ईमान से यीशु को छूते ही वो एक पल में हो गई। और इस पर हमने सीखा था कि आज हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं। उन दुखियों के लिए हमें क्या करनी है? दुआ हमदर्दी और उनके लिए हौसला और तसल्ली का वसीला बनना है। सो आज इस वाक्य पर हम गौर करेंगे, वो क्या है, यायर और उसकी 12 बरस की बेटी। हम जानते हैं कि जब किसी घर में मौत का आलम हो, बीमारी का आलम हो, तो कैसा माहौल होता है। लोग डरे होते हैं, घबराए होते हैं, फिक्रमंद होते हैं कि क्या होगा। सो यहां पर एक बाप क्या है, यीशु के पास जाकर मिन्नत करता है, उसके आगे झुक कर कहता है कि मुझे तुझ पर एतकाद और भरोसा है, तू आ और आकर क्या कर, मेरी बेटी को क्या कर दे, शिफा दे, उसे जिंदा कर, उसे ठीक कर, उसकी ये मिन्नत है। सो क्या हुआ, यीशु मसीह उसके साथ जा रहा है, जाते जाते 12 बरस से बीमार औरत को शिफा मिलती है। वहां पर ये सारा माजरा है, और जैसे ही यीशु मसीह कुछ पलों के लिए रुका है, कोई यायर नाम जो सरदार है उसके घर से आकर कहता है कि यीशु को अब तकलीफ ना दे, यीशु को अब तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को अब कहने की जरूरत नहीं। आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत दफा ऐसी बीमारियां, ऐसी मुश्किलें, ऐसी परेशानियां हैं जिसमें खुदावंद खुदा हमें रहाई किस तरह देता है, इस दुनिया के दुखों से आजाद करके। वो हमारे लिए मौजदा जैसा मौजदा हम चाहते हैं नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। बीमारी में बहुत दफा हम सोचते हैं, जैसे बाजी यहां पर बैठी है, अम्मी बैठी है, यासर के लिए सारे दुआ कर रहे थे कि खुदावंद खुदा इसे बहाल कर, बहाल कर। सवाल यही नहीं कि हमारा ईमान कमजोर था, सवाल ये नहीं कि क्यों हमारे दुआ का जवाब नहीं दिया गया, सवाल ये करने की जरूरत है इसके पीछे कि क्या खुदा को ज्यादा पसंद आया कि उसे इस बदन के वतन से जुदाई दे और अपने वतन में ले जाए। क्योंकि बहुत सी बीमारियां, बहुत सी मुश्किलात हम जो इस जमीन पर सामना करेंगे उनका खुदा जवाब नहीं देगा। जैसे हम इस मौजे को पढ़ते हैं कि यीशु से बहुत दफा हम गिला कर सकते हैं कि तूने यायर की बेटी को तो जिंदा कर दिया, मेरे लिए ये काम तूने क्यों नहीं किया, कह सकते हैं ना, हम सोचते भी, हम दिल में ख्याल भी आता है, लेकिन बहुत सी दुआओं का जवाब खुदा यीशु मसीह वो अपने तरीके से देता है कि उसकी मर्जी में क्या है कि ये शामिल है कि ऐसा ही हो। यीशु मसीह की खुद अपनी मिसाल है, खुदा का बेटा होते हुए गतसमनी बाग में खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब शैतान उसे कह रहा था क्या तू खुदा का बेटा है, क्या तेरे मरने से लोग निजात पा सकते हैं। तो याद है गतसमनी में खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो बहुत सी ऐसी दुआएं, हालात, वाकयात है जिसमें हमें आकर यही कहना होगा, खुदावंद खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन कुछ ऐसे वाकयात है यहां पर जैसे हम पढ़ रहे हैं, यायर उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है, और यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने जवाब में कहा, खौफ ना कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी। बहुत से ऐसे वाकयात होंगे जब हमें डॉक्टर ऐसा कह देंगे, जब लोग ऐसा कह देंगे कि जी मौत वाकया है या कुछ हो नहीं सकता, कुछ नामुमकिन नहीं, खुदावंद यीशु मसीह कहेगा खौफ ना करो, घबराओ ना, डरो ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं ये दो सच अपनी जिंदगी में हम उतार लें, अगर खुदा हमारी दुआ का जवाब जिस तरह हम देना लेना चाहते हैं नहीं देता, तो ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारा ईमान कमजोर है, ये शक करने की जरूरत नहीं कि क्या हमारी दुआ सुनी गई है या नहीं। खुदा को पसंद आया कि यीशु मसीह की तरह हम कहेंगे, ऐ बाप मैंने कहा कि ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी
پوری ہو.
اور دوسرا طریقہ بائبل مقدس میں کیا ہے؟ باوجود سب کچھ غلط ہو رہا ہے، سب کچھ جو ہم نہیں چاہتے وہ ہو گیا ہے، ہمارے دل کے ارمانوں کے خلاف سب کچھ، لیکن یسوع کہتا ہے خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی. اور کیا ہوا؟ 51 آیت میں لکھا ہے، اور وہ اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر جانے نہ دیا. اس بات پر ذرا غور کریں گے، یسوع مسیح نے بہت سے ایسے عجیب معجزات کیے، واقعات خود ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں، یہ تین شاگرد ہمیں اس کے ساتھ نظر آتے ہیں. کون کون سے ہیں یہ زیادہ تین شاگرد؟ پترس، یوحنا اور یعقوب. یہ تینوں پہاڑ پر یسوع کی صورت بدل گئی وہاں پر موجود ہے، یہاں پر معجزہ کر رہا ہے، یسوع مسیح موجود ہے اس کے ساتھ. اور بہت سی جگہوں پر دیکھیں یہ تین شاگرد خاص کر کیا ہے جی، یسوع کے بڑے نزدیک ہیں، ان معجزات میں شامل ہیں جو یسوع نے کیے. ہمیں بھی ایسی قربت بنانے کی ضرورت ہے یسوع کے ساتھ، نزدیکی رشتہ یسوع کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، کہ اپنی فیملی میں سب یسوع سے پیار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم اپنی فیملی میں ایک بچے سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا پھر اس کو زیادہ کیا کہتے ہیں جی، پلوٹا ہوتے ہوئے، بیٹی یا بیٹا ہوتے ہوئے اسے زیادہ عزت دیتے ہیں، تو شاگردوں میں بھی یہ تین بہت زیادہ یسوع کے نزدیک ہے. ہمیں بھی شخصی طور پر پترس، یعقوب اور یوحنا کی طرح اس کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے. سو کیا ہوا؟ وہ تینوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اس کی لڑکی وہ مر چکی ہے، تو یسوع مسیح جب وہاں پر جاتا ہے سب رونے والے بیٹھے تھے، ماتم کر رہے تھے، یسوع نے کہا وہ سوتی ہے، اور یہاں پر ایک منٹ میں ماحول بدل گیا. وہ ماتم والے، کرنے والے، رونے والے سب رونے سے کیا کرتے ہیں جی، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مر گئی ہے اور یہ کہتا ہے کہ سوتی ہے. وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے وہ مر گئی ہے، مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ. کیسا ماحول ہوگا کہ ساری ماتم کرنے والی مجلس وہ جہاں پر موجود ہے. یسوع مسیح نے کہا، فلم میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو یونانی کا لفظ یسوع مسیح نے استعمال کیا، اے تلیتا کومی، یونانی کا لفظ اے لڑکی اٹھ. وہ خاص کر جملہ 12 برس سے یا 15 برس کی جو لڑکی ہے ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ بن بیاہی لڑکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یونانی میں یہودی لوگ کہتے ہیں تلیتا کومی. تو یہاں پر ماتم کی جگہ ہے، رو رہے ہیں، اور کیا ہوا؟ لوگ ہنسنا شروع کر دے کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے، اور کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اے لڑکی اٹھ، اور وہ لڑکی کیا ہوتی ہے جی، زندہ ہو جاتی ہے. لکھا ہے اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی. یسوع نے حکم دیا لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. سو آج اس معجزے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم جس بات پر غور کریں، بہت طریقوں سے ہم اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کر سکتے ہیں کہ میرا ایمان کیسا ہونا چاہیے، میری دعا کیسی ہونی چاہیے، میں خداوند پر بھروسہ رکھوں، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں. تو بہت سی سیکھنے والی باتیں اس سبق سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو آج دو باتوں کو میں چاہتا ہوں کہ غور کریں. پہلی بات، خدا ہر ایک دعا کو سنتا ہے، لیکن بہت دفعہ جس طرح ہم دعا کا جواب چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیتا. دوسری بات، وہ ناممکنات کا کیا ہے جی، خدا ہے. ناممکنات سے مراد یعنی کہ جو کچھ ممکن نہیں، جو کچھ ہو نہیں سکتا، انسان کے خیال اور ارادہ اور سوچ اور قوت سے باہر عمل، اسے خدا کر سکتا ہے، اسے خدا کر سکتا ہے. تو وہ معجزات बहुत दफ़ा अजीब तरीके से करता है, वो हमें इस्तेमाल कर सकता है अजीबो गरीब तरीके से। बहुत दफ़ा वो हमारी बीमारी में अपनी गवाही पैदा करता है। मुझे याद है जब हम तबलीग के लिए, खिदमत के लिए एक चर्च में मैं और कैरी कलाम सुनाने के लिए जा रहे थे अपने शहर से, अपनी रियासत से जो सूबा है किसी और सूबे में जा रहे थे, तो मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते सबको याद होगा 2015 का ये वाकया है। गाड़ी चलाते चलाते जब मैं चला रहा था, कैरी अपने भाई से बात कर रही थी, तो अचानक ड्राइवर साइड का टायर फट गया और गाड़ी अपना तवाजन खो चुकी। और कैसा हालात कैसे थे कि नामुमकिन है कि उस कार एक्सीडेंट में से बचा जाए। हमारी जो वो बड़ी कार थी जो हाई रूफ जैसी होती है, उसमें एसी भी था, उसमें टीवी भी था, उसमें फ्रिज भी होती है। तो कारी पानी पीने के लिए उठी है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और यकदम टायर फटा और गाड़ी ने 3-4 चक्कर लगाए। ट्रकों से टकराने की बजाय वो पहली सड़क से दूसरी सड़क, फिर तीसरी सड़क और एक खाई है उसमें से निकलकर जाकर मकई की, क्या है जी, जो खेती बाड़ी की जगह है उस खेत में जाकर रुकी। और इसी के दौरान मेरे बेल्ट लगी हुई है और कैरी छत जो कार की वो फट गई और उसमें से निकलकर मुझसे कई मील दूर तक गिरी। और बाद में जब गाड़ी रुकी तो क्या हुआ, ना मैं बेहोश हुआ ना कैरी बेहोश हुई, क्योंकि बाद में हमने जो बात की तो सारी गाड़ी की छत नीचे आ गई, उसका सारा डैशबोर्ड, सारे जो व्हील है वो टूट गए, उसकी सारी विंडो, यानी कि गाड़ी ऐसे थी जैसे किसी ने मचोड़ कर कोका कोला का टीन कर दिया हो। तो मैं उसी में जिंदा था, तो ऐसे मैं बैठा हुआ हूँ, कोई पुलिस वाला आता है, वो बेल्ट को काट कर मुझे निकालता है बाहर और मैं उससे पूछता हूँ कि मेरी बीवी का क्या बना। तो जैसी गाड़ी की हालत थी लोगों के नज़र में, जिन्होंने गाड़ी को कल्टाबाजियाँ खाते हुए देखा, उन्होंने सोच लिया था कि इसमें से कोई भी आज बचेगा नहीं, मौत लाजमी हो गई होगी उनकी जो इसके बीच थे। तो कैरी जब हवा में उड़ रही थी तो उसने बताया कि मैंने खुदा के फरिश्ता के हाथों को महसूस किया कि जब मैं उड़ रही थी कि गाड़ी में से ऐसे जैसे किसी को निकालते हैं, तो जब मैं ऐसे निकलकर पता नहीं कितनी दूर वो मुझसे गिरी, कोई गाड़ी से नहीं वो टकराई, किसी सड़क से नहीं वो टकराई, ऐसे किसी ने, जैसे उसका तजर्बा है कि खुदा के फरिश्ता ने, उसने कहा कि मुझे अपने परों पर, अपने हाथों पर उठा लिया और जब वो गिरी तो ऐसे जैसे बट्टे बच्चे को चलूंगी में, जब बेड पर लटाते हैं बड़े प्यार से, कैरी घास के ऊपर लेट गई और उसकी एक भी हड्डी ना टूटी। और अगर उसके जो रगड़े वगैरह लगी, जो उसकी जिल्द जो सारी छीली गई, वो कार के बीच में से छीली गई और वो कारपेटर या डैशबोर्ड की चोटें थी, कुछ भी उसे बाहर सड़क पर नुकसान नहीं हुआ। सो कहने का मतलब क्या है, बहुत दफा खुदा नामुमकिन का खुदा है, उस एक्सीडेंट से बचना नामुमकिन था। जब मैं गाड़ी रुकी है तो मेरा ये बाजू ये सारा कटा हुआ था, मेरे सर पर चोटें थी और खून बह रहा था और मुझे यही थी कि खुदा हमसे अभी तक उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। मैंने अभी तक उस वक्त 2015 में कितने तकरीबन 32 सूबे फिरे थे और मेरी दुआ थी कि खुदा मुझे 50 के 50 सूबों में अपना कलाम सुनाने के लिए लेकर जाएगा। उसके बाद अगर उसकी मर्जी हुई तो वो मुझे मौत के वसीला से अपने पास ले जाएगा, वरना अभी मेरा वक्त नहीं आया। सो एक्सीडेंट के वसीला से क्या हुआ, हमने पता नहीं कितने 100 लोगों को वहाँ एक्सीडेंट वाली जगह से अस्पताल, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, उन सब को क्या किया, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा और उसने हमारे साथ भलाई की है, हम उस पर लानत नहीं करेंगे। मैं और कैरी हम गवाही देते रहे, उसकी प्रस्तुति करते रहे और लोग हैरान और परेशान थे कि अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए तो वो फिक्र में गालियां निकालना शुरू कर देते और तुम मौत के मुंह में खुदा की तारीफ कर रहे हो। और जब उस रात अस्पताल में सारे उन्होंने टांके वगैरह लगा दे, सारा कुछ उन्होंने कर लिया, उन्होंने कहा जी आप फारग हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। अगले दिन हम उस कबाड़ की दुकान पर गए जहां पर हमारी गाड़ी को उठाकर ले गए थे ताकि हम अपना जो सामान बचा है वो ले सकें। तो जब वहां पर गए तो जो गाड़ी उठाकर लाए वो कहते हैं कि जी जो इस गाड़ी में थे उनका क्या बना, क्या वो मर गए हैं या जिंदा है। वो कहता है कि उम्मीद नहीं है इस गाड़ी में से बचने की, जैसे उसके तीन के तीन टायर गायब हैं, गाड़ी के साथ से उतर गए। जो हालत है वो लोग इसमें से बचे नहीं होंगे। तो कैरी ने कहा कि नहीं, वो हम ही हैं। और वो बंदा हैरान और परेशान हो गया कि हो नहीं सकता। और वहां पर कैरी उसे खुदा की खुशखबरी देना शुरू कर देती है कि यीशु पर ईमान रखो, वो तुम्हें बचाने की आग से, जो दोज़ख की आग है, कुव्वत और ताकत रखता है। तो ये वाक्या शेयर करने का मकसद क्या है? वो हमारे बहुत दफा दुख में से सुख पैदा करता है, बीमारी में से अपना मौजजा क्या करता है जी, जारी करता है। अगर आज आप किसी ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं तो याद रखें, खौफ ना करें, ईमान रखें, खुदावंद अपनी मर्जी को पूरा करेगा। खुदावंद आपके वसीला से अपनी गवाही देगा और हम भी गवाही देने के लिए तैयार हों। हम दो काम करेंगे, या शिकायत करेंगे या गवाही देंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, खौफ ना कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएंगे। और उस एक्सीडेंट के वसीला से आज तक हम खुदा की गवाही देते हैं और अस्पताल में जिस जगह पर भी हम गए, एक्सरे मशीन, जहां कहीं भी गए, हमें यीशु मसीह ने क्या किया जी, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। बहुत से लोगों को खुदा ने बरकत दी और ना सिर्फ हमें बचाया बल्कि इसका जो खर्चा था वो कितना बनता था पाकिस्तानी, 94 लाख रुपए इस एक्सीडेंट का खर्चा था, हमारी दवाइयों का, हमारे सारी चीजों का। उसके लिए खुदा ने क्या किया, जब अस्पताल, वो मसीही अस्पताल में गए तो खुदा कैसे अजीब काम करता है। उस मसीही अस्पताल में जब पता चला कि ये खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं तो उन्होंने 94 लाख से 37 लाख हमें वैसे ही छोड़ दिया कि हम आप पर नहीं लगाएंगे, और बाकी जो पैसे थे उन्होंने कहा जी आप अब कैसे अदा करोगे, इसकी हमारे साथ किस्तें कर लें। तो वहां पर खुदा की कलीसिया में से जो जिनके साथ मैं खिदमत करता था पादरी साहबान, उन्होंने हदिया के लिए मुझे 10 लाख रुपए दिए और फिर हमने वो अस्पताल को दिए। और आज तक खुदा के फजल से मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी किस्तें अदा कर रहा हूँ। और खुदा ने उस 94 लाख के कर्जे को भी क्या कर दिया, सालों में कम कर दिया, क्योंकि खुदा क्या है जी, नामुमकिन का खुदा है। तो आज हौसला रखें, इत्मीनान रखें, खौफ ना करें, वो आपके और मेरे साथ है। सो आए हम खुदा के जुर झुकें। वो यायर की बेटी की तरह हमें शिफा दे सकता है, वो 12 बरस से बीमार औरत की तरह हमारे लिए बहुत दफा कह सकता है कि इंतजार करो, शिफा होगी, मौजजा होगा, इंतजार करो। और खुदा खुदा क्या है जी, मौजदात का खुदा है। लश्करों के रब छू, बड़ी बरकत दे सब को, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद तू हमारा खुदा है, तू कभी भी अपना मुंह हमसे नहीं फेरता। आज खुदावंद हम खौफ ना करें, तुझ पर एतकाद और भरोसा रखें अपने सारे दिन में, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा बाप की दुआ मांगता हूँ, आमीन।